زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآله. عزیزان گرامی، گزشتہ چار راتوں سے جس موضوع اور محور پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ عبودیت اور بندگی ہے. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام میں سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تخلیق انسان اور تخلیق جنات، جو کہ ذوی العقول ہیں، یعنی صاحبان عقل ہیں. انسان بھی صاحب عقل ہے اور جنات بھی صاحبان عقل ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا کہ یہ عبودیت اور بندگی کر سکیں، اپنی بندگی کے لیے. یہ عرض ہوا کہ اس بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اس بندگی کا کوئی ذرہ برابر فائدہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا. چاہے میں ساری عمر سجدے کروں، اس سجدے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. چاہے ساری انسانیت اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچتا، وہ بے نیاز ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو، یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو، اور یہ جو اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس وقت تک ہر اس فرد کو جو چاہے جنات میں سے ہے یا انسان میں سے، اگر وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کی تخلیق کے مقصد کو اپنی عبودیت اور بندگی قرار دے کر ہمیں کیا سمجھانا چاہا، کیا چاہتا ہے وہ، جب اس کو نہ ہمارے سجدوں کا فائدہ ہے، نہ اس کو ہماری اللہ سے بے نیازی کا کوئی نقصان ہے، نہ ہمارے سجدوں سے اس کو فائدہ ہے، نہ عدم سجدہ سے اس کو نقصان ہے، پھر اس عبودیت اور بندگی کے لیے اس انسان کو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کل رات کچھ باتیں آپ سے عرض ہوئیں کہ انسان من حیث انسان روح اور بدن دو قوتوں کا حامل ہے، بدن کی اپنی ضروریات ہیں، روح کی اپنی ضروریات ہیں، بدن عارضی ہے، روح دائمی ہے، روح مستقل ہے، بدن کی مدت محدود ہے، بدن میں نشو نما بھی ہوتی ہے اور اس نشو نما کے بعد اس کا ڈکلائن بھی شروع ہو جاتا ہے، اترائی بھی شروع ہو جاتی ہے، روح نشو نما تو ہوتی ہے لیکن اس کی نشو نما کے دو پہلو ہیں، بدن میں صلوات بھیجیے بر محمد والے، کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بدن جب نشو نما پاتا ہے تو بدن میں طاقت آتی ہے، بدن بڑھتا ہے، لیکن اس بدن کی نشو نما میں ایک تناسب ضروری ہوتا ہے، تناسب کیا مطلب ہے اس کا، یعنی ایک ہم آہنگی بدن کے تمام اعضاء کو آپس میں ہم آہنگ ہو کر نشو نما پانا چاہیے، اگر توازن بدن کے مختلف اعضاء کے درمیان توازن اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو انسان اب نارمل کہلاتا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر کسی کی ایک ٹانگ صرف ایک انچ چھوٹی رہ جائے اور دوسری ٹانگ صرف ایک انچ لمبی ہو جائے تو انسان بیلنس ہو کے چل نہیں سکتا، اتنا نازک ہے، اتنا نازک، اگر انسان کی ناک چھوٹی رہ جائے چہرہ بڑا ہو جائے انسان اب نارمل لگتا ہے، انسان کا ایک کان بھرنا شروع ہو جائے اور دوسرا کان چھوٹا رہ جائے انسان ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے، دوسروں کو دکھانے سے بھی کتراتا ہے، چھپاتا ہے، تمام اعضاء کو آپ اپنی نظر میں رکھ لیں، محسوس کریں گے کہ انسانی بدن کے نشو نما کے حوالے سے اللہ نے قدرتی طور پر ایک توازن رکھا ہے، اس توازن میں اگر ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو انسان ان بیلنسڈ انسان کہلاتا ہے، اب نارمل انسان کہلاتا ہے، اسی حساب سے اس کی روح کا جائزہ لیں، روح انسانی کو بھی نشو نما کی ضرورت ہے، جس طرح بدن کو آپ خوراک دے کر نشو نما اس کو دیتے ہیں تو بدن کی خوراک کیا ہے، اچھا کھانا، گوشت ہے، گھی ہے، سبزیاں ہیں، وہ تمام مقوی غذائیں، روح کی بھی تو کوئی غذا ہے، وہ روح کی غذا کیا ہے، روح کی غذا اثر کیا کرتی ہے، روح کی غذا کے نتیجے میں روح کی تشکیل میں کس طرح سے ایک کردار ادا ہوتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، اس لیے ہم جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کی تعلیم کے لیے داخل کرتے ہیں لیکن اس کی تربیت کے لیے داخل نہیں کرتے، جب ہم ایک بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس کی عقل کی نشو نما کے لیے اس کو بھیجتے ہیں لیکن اس کے دل کی نشو نما کے لیے اس کو نہیں بھیجتے، دل کی نشو نما کے ذرائع اور ہیں، عقل کی نشو نما کے ذرائع اور ہیں، عقل کا تعلق فکر، تدبر، سوچ اور گفتگو سے ہے، اور دل کا دل کی نشو نما کا تعلق ان اعمال سے ہے جن کے نتیجے میں دل کی کیفیتوں میں چینجنگ آتی ہے. دل کی کیفیتوں میں انبیاء الہی کو اللہ تبارک و تعالی نے جب مبعوث فرمایا تو ان کی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تین چیزیں, ایک یزکیہم, ایک یعلمہم الکتاب, اور ایک حکمت. یزکیہم کیا ہے؟ یزکیہم یعنی تربیت, یزکیہم یعنی ان کو پاک کرنا, یزکیہم یعنی ان کے اندر کی تطہیر. آپ جب قربانی کا موسم آتا ہے اپنے گھر میں بھیڑ بکرا لے کر آتے ہیں, اس کو آپ ذبح کرتے ہیں. جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے وہ زندہ جانور ہوتا ہے. اس جانور کو جب آپ چھری پھیرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو خون باہر نکل آتا ہے, اگر وہ خون ایک آپ کے انگوٹھے سے بڑی مقدار میں آپ کے بدن سے آپ کے کپڑے سے لگ جائے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون نجس ہے. چونکہ وہ خون نجس ہے اس لیے آپ پڑھ نہیں سکتے. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نجاست کو دور کرنے کے عمل کو. یہ جو آپ کہتے ہیں نا, پڑھتے ہیں قرآن کریم میں یزکیہم, انبیاء آ کر کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم, تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی روح میں سے نجاستوں کو الگ کر کے باہر نکال کر اس کی روح کو پاکیزہ کر دیتے ہیں. یہ تربیت ہے, تعلیم اور ہے. تعلیم کا تعلق انسانی عقل سے ہے, اس کی نشو نما سے ہے. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی روح کی ایسی تربیت جس کے نتیجے میں نجاستیں اس کے اندر سے نکل جائیں. اسی طرح جس طرح سے بکرے کو بھیڑ کو آپ ذبح کر کے نجس خون آپ نکال دیتے ہیں, عربی میں بکرے کو ذبح کرنے کے اس عمل کو, بھیڑ یا گائے یا بیل کے ذبح کرنے کے اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تزکیے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نجاست کو دور کر دیتے ہیں. جب آپ کسی بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں اس کا کٹا ہوا گلا پاک پانی سے دھو دیتے ہیں, دھونے کے بعد اب اس کے اندر پھر بھی خون ہوتا ہے لیکن جو خون باقی بچتا ہے وہ نجس نہیں ہے, وہ پاک ہے. وہ پاک ہے اگر وہ آپ کے بدن سے لگ جائے, کپڑے سے لگ جائے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے, لیکن وہ جو باہر نکلنے والا خون ہے وہ نجس ہے. اس لیے اس عمل کو تزکیہ حیوان کہتے ہیں. انبیاء آئے ہیں انسان کے تزکیے کے لیے اور اس کے اندر کے اس حیوان کو تزکیہ کر کے انسان بنانے کے لیے. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے اور تربیت بھی اسی کو کہتے ہیں. اب وہ جو اندر کی نجاست ہے وہ کیا ہے جس کا تعلق روح سے ہے؟ روح کے اندر کیسے, جیسے کل میں نے اشارہ کیا, تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی, روح کے اندر دو طرح کی خصوصیات ہیں, ایک جبلی اور ایک فطری. فطرت انسان انسان کو اوپر لے جانے کے لیے ہے اور جبلت نیچے لے جانے کے لیے ہے. نیچے کی دنیا ناسوتی ہے, یہی دنیا جس میں ہم ہیں. دنیا کا لفظ جو ہے قرآنی لفظ ہے نا, عربی لفظ ہے, قرآنی لفظ ہے. قرآن نے اس دنیا کے لفظ کو استعمال کیا ہے. یہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا دنی سے ہے, دنی پست کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو عالم ہے عالم پستی ہے. اس عالم پستی کی زنجیروں میں جکڑنے کی جو طاقت اور قوت انسان کی روح کے اندر چھپی ہوئی ہے, اس طاقت کو آپ جبلت یا حیوانیت کہتے ہیں. اس حیوانی طاقت کو کمزور کرنا اور اس کے مقابلے میں وہ فطرت جو انسان کو علو, بلندی, پاکی, طہارت اور اعلیٰ اور ارفع مقام کی طرف پرواز دینے کا باعث ہے, اس کو آپ فطرت کہتے ہیں. وہ فطرت آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے, یہ جبلت آپ کو حیوانیت کی طرف لے کر جاتی ہے. इसलिए इन दो खुसूसियात में से हैवानियत को उस फितरत के ताबे बनाना, हैवानियत को खत्म करना नहीं, यह जहन में रखिएगा। बाज़ोकात लोग यह समझते हैं कि इंसान अपने अंदर की तमाम ख्वाहिशात का गला घोंट दे, अगर ख्वाहिशात का गला घोंट दे तो वह जिंदा कैसे रहेगा, अगर ख्वाहिशात का गला घोंटे तो दुनिया आबाद कैसे होगी, अगर ख्वाहिशात का गला घोंटेगा तो फिर दुनिया में जिद्दोजहद की का जज्बा कैसे बाकी रहेगा। ये ख्वाहिशात, ये जो हैवानी जबिल्ली ख्वाहिशात हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखा ही इसीलिए है कि उसके जरिए से इंसान हमेशा मुतहर्रिक रहे और उन ख्वाहिशात के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करे। लेकिन इन खुसूसियात को अक्ल के ताबे करके, शरीयत के ताबे करके, फितरत को जगाकर इन ख्वाहिशात को उसके कंट्रोल में दिया है या कंट्रोल में देने की बात की है, ताकि इंसान अपनी इस दुनिया की जिंदगी को कायम भी रख सके और उसमें डूबकर हलाक भी ना हो, दोनों चीजें साथ में चलें। लिहाजा अगर आप हम अपनी जिंसी ख्वाहिश का गला घोंट दें तो नस्लें इंसानी आगे नहीं बढ़ सकती, भूख का गला घोंट दें तो हम खुद जिंदा नहीं रहते, आगे बढ़ने का, दुनिया हासिल करने का जज्बा अगर आप मार दें तो कोई भी मेहनत नहीं करेगा फिर, चूंकि उसको दुनिया की जरूरत है ही नहीं। जबकि अल्लाह तबारक बताला ने इन तमाम चीजों को इंसान के अंदर खल्क किया, उसकी रूह के अंदर खल्क किया, लेकिन उनके दरमियान एक तवाजुन रखा, एक बराबरी रखी, एक ऐसा तवाजुन कि ना ये कम हो ना वो बढ़े, ना ये कम हो ना ये बढ़े, दोनों के दरमियान ऐसा तवाजुन हो कि दुनिया के मामलात भी चले और आखिरत भी इंसान के जहन में जिंदा रहे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब आप इस एतबार से इस दुनिया के अमाल को देखते हैं तो इस दुनिया के तमाम अमाल तब इबादत बन सकते हैं जब वो आपकी अकल, आपकी नीयत, आपकी सोच के ताबे हो और आप इस दुनिया के तमाम अमाल को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में बजा लाना शुरू कर दें। जैसे कल मैंने इशारा किया, थोड़ा सा खोल रहा हूं उसको मजीद, कि जब आप सोने के मौके पर भी नियत करके सोएंगे तो वो नियत आपके उस सोने को इबादत बना देगी। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून के जिमन में आपका सोना भी, जो कि गफलत है, गफलत, लेकिन वो भी इबादत करार पाएगी, आपका चलना भी इबादत करार पाएगी जब उस चलने के पीछे हदफ का तायुन हो और नियत अल्लाह हो। जब आप शादी करेंगे वो शादी भी इबादत करार पाएगी, जब आप किसी से मिलेंगे आपका मिलना भी इबादत करार पाएगा, जब आप किसी से कत्ए ताल्लुक करेंगे तो कत्ए ताल्लुक भी इबादत करार पाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी दोस्ती भी खुदा के लिए होगी और दुश्मनी भी खुदा के लिए होगी। देखिए, सोचिए ना इस बात पर, हमारा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इबादत न बन सके, और कोई अमल ऐसा नहीं है जो हमें खुदा से दूर करने की सलाहियत न रखता हो। हमारे हाथ में है, हमारे इख्तियार में है कि हम कैसे उस अमल को बजा लाते हैं। इसलिए जब कोई अमल हम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है, उस अमल के हवाले से हमारा इदराक, हमारी सोच, हमारा फहम, हमारा अंदाज, और यह कि हम किस नीयत से वो अमल बजा ला रहे हैं। मस्जिद बनाना इबादत है, इमाम बारगाह में आना इबादत है, मेहराब बनाना इबादत है, किसी को पानी पिलाना इबादत है, बशर्ते कि नीयत हो। अगर नीयत ना हो तो वही मस्जिद बनाना एक मुबाह अमल है, क्योंकि आपने नीयत तो नहीं की, आपने इरादा तो नहीं किया। आपकी अगर नीयत ना हो तो आपका बेहतरीन काम भी अजर से महरूम है, इसलिए कि आपकी नीयत खुदा की नहीं थी। खुदा की नीयत से छोटे से छोटा काम बहुत बड़ा बन जाता है, और खुदा की नीयत न हो तो बड़े से बड़ा काम छोटी से छोटी कीमत भी नहीं रखता। कीमत आपकी नीयत की आए, अमल की नहीं आए। अमल नीयत के ताबे है। अमल तब बड़ा बनता है जब नीयत बड़ी हो, अमल तब छोटा बनता है जब नीयत छोटी हो। इसलिए असल चीज यह नहीं है कि आप किसी फकीर की मदद के लिए 10 रुपया दे रहे हैं या 1 लाख, यह मेयार नहीं है। मेयार यह है कि आप किस नीयत से दे रहे हैं। जिस नीयत से दे रहे हैं वो मेयार है, उसी की बुनियाद पर आपके हाथ में पैमाना आ जाता है कि आपका यह अमल बड़ी इबादत है या छोटी इबादत है, इबादत है भी या नहीं। क्योंकि हम एक मस्जिद में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मैं मस्जिद ही की मिसाल देता हूं। आपने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द का नाम सुना होगा जिनको बहलोल कहा जाता है, नाम सुना होगा आपने। बहलोल कौन थे? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के वो शागिर्द जो रशीद थे, फकूर थे, समझदार थे, लेकिन माशरों में दीवानों की तरह से हरकतें करते थे और लोगों के जमीरों को झंझोड़ते थे। जिनको बात सीधी तरह से समझ नहीं आती थी उनको मुख्तलिफ अपनी हरकतों के जरिए से हकायक की तरफ मुतवज्जे करते थे। उनके महल्ले में एक मस्जिद बन रही थी। मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर। आपने अगर मस्जिद की सिर्फ एक ईंट रखी तो ये एक ईंट आलम आखिरत में आपके लिए बहिश्त का दरवाजा है। एक ईंट, एक ईंट, एक मुसल्ला आप बिछा दें, यही मुसल्ला आपके लिए वहां पर एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा सिला है। इसलिए कि ये आपके बहिश्त का बाग है। उस तफसील में नहीं जाता। मस्जिद बन रही थी, देखा शबो रोज मुसलमान माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, गारा बना रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं, सरिया ला रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, शब रोज मेहनत कर रहे हैं। मस्जिद बन गई, मस्जिद मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हुई, अब जाहिर है जहां पर मस्जिद बनेगी उसकी कोई कमेटी होगी, वो कमेटी जिम्मेदार भी होगी और वही कमेटी लोगों को मैनेज भी करेगी, कामों को मैनेज भी करेगी। मस्जिद की कमेटी की तरफ से ऐलान हुआ कि भाई जुमे के दिन, फर्ज करें जुमे के दिन सुबह 10 बजे हम मस्जिद का इफ्तिताह कर रहे हैं, चारों तरफ से लोग आए ताकि मस्जिद का इफ्तिताह भी हो और जुमे की नमाज भी हो। रात में बहलोल मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, घर से एक बड़ा सा तख्ता लेकर आए और तख्ते के ऊपर लिखा मस्जिद बहलोल। रात की तारीकी में दीवार पर चढ़े, मस्जिद के सदर दरवाजे के ऊपर कीलों से ठोंका और ये बोर्ड लगा दिया मस्जिद बहलोल। वापस आ गए, सुबह 10 बजे पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो देखा वो इंतजामी कमेटी भी और लोग भी जिन्होंने गारा बनाया, ईंटें लेके आए, सीमेंट दी, ये किया वो किया, बड़े परेशान हैं और जरा मुस्तरिब हैं। जैसे ही बहलोल दरमियान में पहुंचे किसी ने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। ऐलान हुआ आ गया पकड़ लिया और पकड़ के धुनाई शुरू कर दी। किसी ने मुक्का मारा, किसी ने लातें मारी, किसी ने दो चार गालियां सुनाई। बहलोल चीखते रहे कि भाई मुझे मेरा जुर्म बताओ कि मैंने जुर्म क्या किया है। बोलने पे कोई तैयार नहीं, हाथ चल रहे हैं, जबान चल रही है। जब वो मार धाड़ के बाद थक गए और बहलोल भी मार खा खा के थक गए, मरम्मत खूब हुई, तो उसके बाद जब इनको छोड़ दिया तो ये उठे और कहा भाई मेरा जुर्म तो बताओ, मैंने जुर्म क्या किया है। जवाब मिला कि ये जो मस्जिद है ये तुमने बनाई है या हमने? कहा कि आपने। कहा फिर तुमने अपना नाम क्यों लगाया है, क्यों तुमने ये बोर्ड लगा दिया कि ये मस्जिद बहलोल है? तो कहा अच्छा इस वजह से तुमने मुझे मारा है? कहा हां। कहा अच्छा ये बताओ कि ये मस्जिद तुमने किसके लिए बनाई है? सबने कहा हमने खुदा के लिए बनाई है। कहा अच्छा खुदा के लिए बनाई है, तो जिस खुदा के लिए तुमने ये मस्जिद बनाई है अगर मैं बोर्ड लगा दूं तो वो खुदा धोखा खा जाएगा और अजर मुझे देगा, तुम्हें महरूम कर देगा। सोच में पड़ गए, कहा कि बात तो सही है। कहा कि देखो मस्जिद अगर तुमने बनाई है तो ये तुम्हारे और खुदा के दरमियान का मामला है। पूरी दुनिया मिलकर कहे कि तुमने नहीं बनाई, जिसके लिए बनाई है वो जानता तो है, वो तो धोखा नहीं खाएगा, वो अजर उसी को देगा जिसने बनाई है। लेकिन अगर तुम्हें इतनी अपनी शोहरत की ख्वाहिश है कि तुम्हारा नाम लगे और लोग कहें इसने बनाई है, तो फिर समझ लो ये तुमने अल्लाह के लिए मस्जिद नहीं बनाई, लोगों के लिए मस्जिद बनाई है। जो मेहनत लोगों की तारीफें लेने के लिए करता है उसको अजर तारीफों की सूरत में लोगों से मिल जाता है, अल्लाह की तरफ से अजर उसको कोई नहीं मिलता। हर मामले में ऐसा ही है। इसलिए असल चीज इंसान की नीयत है कि वो नीयत क्या कर रहा है। एक और वाकया अर्ज कर देता हूं, आज जरा जल्दी खत्म भी करनी है क्योंकि काफी लेट हो गया। सलावत भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि हमारी ये मजालिस तरबियत गाहें हैं, हमारी रूहों की तत्हीर का जरिया है, हमारी फिक्रों को जिला बशने, रोशनी अता करने, नूरानियत अता करने और अहलुल बैत से जोड़ने का जरिया है, इसलिए हमें अहलुल बैत की सीरत को इन्हीं मजालिस में देखना चाहिए, सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए, सीखना चाहिए। इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हफ्तम इमाम मूसा काजिम की इमामत का ऐलान हुआ। कुछ लोगों ने झूठ में इमामत का अपनी इमामत का ऐलान कर दिया। नतीजतन इस्लामी माशरे के अंदर एक तश्वीश पैदा हुई। अब किसी को उन पर यकीन और किसी को इन पर यकीन, अब क्या किया जाए। निशाबूर, निशाबूर कहां पर है? मशहद से कोई 120-130 किलोमीटर के फासले पर। जिन लोगों ने मशहद की ज्यारत की है वो यकीनन निशाबूर भी गए होंगे, जहां पर इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कदमगाह मौजूद है। उस कदमगाह में आप जाइए, जब आप निशाबूर में दाखिल होते हैं तो वहां पर बीच चौराहे में एक मजार है। वो मजार एक खातून का है जिसको तारीख ने उम्मे शतीता कहा है। ये जो निशाबूर के लोग हैं मोमिनीन थे, ये सब इकट्ठे हुए, माल इमाम जमा किया, खुम्स का माल जमा किया, मदीना की तरफ रवाना होने लगे। कस्त और इरादा यह था कि मदीना जाकर इमाम मूसा इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम से कुछ सवालात पूछते हैं हम, अगर उन्होंने जवाबात दे दिए तो हमें यकीन हो जाएगा यही इमाम है, बाकी लोग झूठे हैं, तो हम सारा माल जो उनका है उनके हवाले करके बड़ी उज़्ज़िमा होकर वापस आ जाएंगे। लिहाजा बुजुर्ग जमा हुए, उलमा जमा हुए, उन्होंने एक सवालों की फेरिस्त बनाई और एक काफिला बनाया, काफिले को सामान दिया। अब कई ऊंट, कई घोड़े, कई खच्चर, उनके ऊपर सामान लदा हुआ, पैसे हैं, बाकी चीजें हैं, निकलने लगे निशाबूर से मदीना की तरफ। पीछे से एक बूढ़ी खातून की आवाज आई, काफिले वालों रुको, मेरा एक छोटा सा तोहफा है, ये भी लेते जाओ। रुक गए, वो खातून आई, खातून ने अर्ज किया काफिला सालार से कि जब तुम लोग मदीना जा रहे हो तो मैंने अपने इमाम के लिए एक पैकेट तैयार किया है, इस पैकेट के अंदर 4 अंडे हैं, 5 दिरहम हैं और 1 गज कपड़ा है, मेरे पास यही कुछ है, इसलिए ये लेकर जाओ और मेरे इमाम की बारगाह में पेश कर। कहा ठीक है, उठा लिया। मदीना पहुंचे, इमाम की बारगाह में हाजिर हुए। जब सब बैठ गए तो इमाम ने अज खुद सवाल फरमाया कि लोगों बताओ निशाबूर वालों, क्या तुम सवाल पूछोगे या मैं खुद तुम्हारा सवाल बताऊं और जवाब भी बता दूं? जवाब मिला, यबन रसूलुल्लाह, जब आपको मालूम है कि हमारे सवालात क्या हैं तो फिर आप खुद सवाल बताइए और जवाब भी दीजिए। आपने जवाबात दे दिए, तमाम सवालात के जवाबात मिल गए। सबने लब्बैक कहा, सलावात पढ़ी और अर्ज किया कि यबन रसूलुल्लाह, आपकी अमानत हमारे पास थी, हम लेके आए हैं, बाहर है, इसको हम उतरवाते हैं। सारा सामान अनलोड हुआ खच्चरों, ऊंटों और घोड़ों के ऊपर से। خاموشی چھا گئی. کچھ دیر بعد امام نے فرمایا کہ وہ جو خاتون نے پیکٹ دیا تھا وہ کہاں ہے؟ گئے ڈھونڈا لے کر آئے اور پیش کیا. امام نے وہ پیکٹ اٹھایا اندر تشریف لے گئے. اب ذرا تصور کریں اتنا بڑا قافلہ ہے, اونٹوں پر سامان ہے, خچروں پر سامان ہے, گھوڑوں پر سامان ہے اور مقدار بھی اتنی زیادہ ہے. امام نے ایک لفظ نہیں پوچھا کہ کون سا سامان کس کا ہے, کتنا ہے کیا نہیں ہے, لیکن پوچھا تو کیا پوچھا, اس بوڑھی خاتون نے جو بھیجا ہے وہ بتاؤ وہ کیا ہے, وہ کہاں ہے. اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا. فرمایا کہ اب تم جب واپس جاؤ گے, جس دن نیشابور پہنچو گے اس دن کے بعد 17 دن تک یہ خاتون زندہ رہے گی, 17ویں دن اس کا انتقال ہو جائے گا. تم نے جاتے ہی میری طرف سے یہ پیکٹ اس خاتون کو دینا ہے. اس کے بعد خود فرمایا کہ اس پیکٹ میں ایک قمیص ہے جو میری والدہ کی ہے, اس خاتون سے کہنا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو کفن کے اوپر یہ قمیص پہنا دیں, فشار قبر سے اللہ اس خاتون کو اس قمیص کی بدولت نجات عطا فرمائے گا. پہلی بات. دوسری بات, فرمایا کہ اس پیکٹ کے اندر 17 درہم ہیں, اس خاتون کو دو اور کہو کہ جب تک وہ زندہ ہے ان 17 درہموں میں سے خرچ کرے, اور جب اس کی وفات کا وقت آ جائے, تاریخ بتا دیا ہے, وصیت کر جائے جو باقی درہم رہ جاتے ہیں اس کے حوالے سے کہ اس کی کفن کے حوالے سے, غسل کے حوالے سے, دفن کے حوالے سے, قبر کے حوالے سے, نظر نیاز کے حوالے سے وصیت کر جائے گی, ان پیسوں میں یہ کام کیا جائے جو میں دے رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر کہا تیسرا پیغام اس خاتون کو دینا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے تو کوئی شخص اس کا جنازہ نہ پڑھائے. کہ اپنا رسول اللہ, وہ کیوں؟ فرمایا کہ میں خود آؤں گا مدینہ سے جنازہ پڑھاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں ذرا سوچئے کیوں ایسا ہے. اتنا بڑا سامان ایک طرف اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پیکٹ, اور اس کا رد عمل اتنا بڑا, کس کی طرف سے؟ اللہ کی اس حجت کی طرف سے جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ کس کا دل کتنا پاکیزہ ہے اور کون کس نیت سے دے رہا ہے. اصل قیمت آپ کی نیت کی ہے, وہی عبادت بھی ہے اور وہی گناہ بھی ہے. بعض اوقات ریا کی نیت سے آدمی کوئی عبادت انجام دیتا ہے, عبادت کی تلخیاں بھی چکھتا ہے اور ساتھ میں عذاب بھی چکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت ریا کاری کی تھی, نیت ریا کاری کی تھی. اور بعض اوقات بے لوس ہو کر, بے لوس ایک درخت کے جڑوں پر پانی ڈال دیتا ہے, اس کو کسی سے کوئی طلب نہیں آئے. ایک کتاب ہے, آپ نے شاید نام سنا ہو, قیامت کے 3 منٹ, اس کا ترجمہ ہوا ہے اور اس وقت جو ہے مارکیٹ میں شاید مل جائے. بعض لوگوں نے نظر اور نیاز کے طور پر وہ کتاب چھپوائی ہے اور جوانوں میں بانٹی ہے. انسان کی اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بڑی ہی بہترین کتاب ہے. اور کتاب اس حوالے سے ہے کہ ایک شخص جو 3 منٹ کے لیے مر گیا تھا, بعد میں اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی, واپس آیا, برزخ کی سیر کر کے واپس آیا ان 3 منٹس میں, اور ان 3 منٹس میں اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 48 سالوں کی پوری کارکردگی کو اس عالم میں دیکھا بھی, جواب بھی دیا, سوال و جواب بھی ہوئے, نکیر اور منکر کا سامنا بھی ہوا, اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کچھ بزرگوں, کچھ عزیزوں اور کچھ دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس کو وہاں سے واپس اس دنیا میں بھیجا. تو جب زندہ ہوا تو اس نے پھر اس دنیا میں جو کچھ دیکھا وہ لکھا. ابھی زندہ ہے, بندہ زندہ ہے, بندہ زندہ ہے. वहां पर वो एक जगह नकल करता है, कहता है कि मैं एक दिन जिंदा था अपनी नौजवानी में, मशहद के लिए मैं एक गाड़ी में निकला, रस्ते में गाड़ी के रेडिएटर में कोई मुश्किल पैदा हुई, पानी की जरूरत पड़ी, मुझे ड्राइवर ने कहा कि पानी लेके आओ, मैं कैन लिया, बहुत दूर गया पानी लेने के लिए, वहां से कैन भरा, बहुत बड़ा कैन था 20 लीटर का फर्ज करें, और रेडिएटर में पानी की गुंजाइश बहुत कम थी, तो मैंने वो सारा पानी भरा। आ रहा था, मुझे ख्याल आया कि मैं इतना ज्यादा पानी लेके अपने आप को मुशक्कत में डाल रहा हूं, तो क्यों मैं ये सारा पानी लेके जाऊं, गिरा देता हूं और कुछ मुझे भी सुकून मिलेगा, आराम से उठा लूंगा। गिराने लगा तो मेरी नजर पड़ी एक दरख्त पर, एक दरख्त पर, वो दरख्त खुश्क हो रहा था, जड़ें खुश्क हो रही थी पानी न मिलने की वजह से। मैंने अपना रास्ता बदला, उस दरख्त के करीब गया, जड़ों की जगह साफ की, आधा पानी उसमें उंडेल दिया ताकि दरख्त की प्यास बुझे। दरख्त आकल नहीं है, दरख्त इंसान नहीं है, उसके उस तरह के जज्बात और एहसासात नहीं है, लेकिन खल्कुल्लाह तो है, अल्लाह की मखलूक तो है। कहा कि मैंने उसकी जड़ों में ये पानी डाल दिया, वापस आ गया और मशहद हम चले गए। कहा जब मुझसे नकीर और मुनकर सवाल कर रहे थे एक एक दिन, एक एक घंटे और एक एक लम्हे के बारे में, ये बड़ी तफसीली चीज है, कभी अगर खुदा ने तौफीक दी बयान कर दूंगा, तो जब उस दिन के अमल पर आए तो मैंने देखा कि अर्श में जश्न बरपा है। मैंने पूछा फरिश्ते से कि अर्श में जश्न क्यों बरपा है इस तारीख में, कहा कि तुमने बेलोस होकर उस दरख्त की जड़ों में जो पानी डाला था उसकी वजह से अल्लाह इतना खुश हुआ कि उसके फरिश्तों ने अर्श में जश्न मनाया कि हमारे बंदे के अंदर इतना इखलास था। आप जरा सोचिए, ये कोई अफसाना नहीं है। और इसी के मुकाबले में एक और वाकया नकल करता है, कहता है कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद, किसी को नहीं पता था कि वो मस्जिद किसने बनाई है, किसी को नहीं पता, जिसने बनाई है वो बड़ा ही पहुंचा हुआ आदमी था, तो उसने अपना नाम छुपाए रखा, मस्जिद बना दी, मस्जिद भी बड़ी आबाद थी। तो मैं उन अमाल में जब मुझसे सवाल और जवाब हो रहे थे, हर दिन का अलग से मुझसे हिसाब मांगा जा रहा था, एक मकाम पर पहुंचा एक तारीख में, तो उस तारीख में मेरे अकाउंट में उस मस्जिद का सवाब लिखा गया था। कहा कि मैं जरा हैरत हुई मुझे, मैंने पूछा कि मैंने तो मस्जिद नहीं बनाई, तो ये इतनी बड़ी अजीम मस्जिद मेरे हिस्से में कैसे आई। पर्दा हटा, पर्दा हटा, मैंने क्या देखा, उस दिन मैं मस्जिद गया था, मस्जिद में कुछ इबादात वगैरह से फारोग जब मैं निकलने लगा तो एक कोने में वो जो मस्जिद का बानी था उसने दो तीन लोगों के दरमियान, मैं जब आगे बढ़ गया तो मेरे पीठ पीछे मेरी गीबत की थी, मेरी गीबत की थी, गीबत मेरा एक ऐब, मेरी एक खामी लोगों के सामने बयान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस ऐब बयान करने के जुर्म में उसके इतने बड़े काम को मेरे अकाउंट में मुंतकिल कर दिया और मेरे गुनाह पाक कर दिए। ये रिवायात कहती हैं, अहादीस कहती हैं कि आलम आखिरत ऐसी दुनिया है और ऐसा आलम है, इसलिए इस दुनिया में हर चीज का ख्याल रखने की जरूरत है, हर चीज का। कल अरबईन है, आप जाएंगे अरबईन में, इसलिए न जाएं कि जुलूस देखकर वापस आए, इसलिए न जाएं, इसलिए न जाएं कि आपने वहां पर न्याज खानी है और वापस आना है, नहीं, किस लिए जाएं, दिलबंदे जहरा की बारगाह में सलाम की नियत कर ले और हुसैन इब्ने अली के दुश्मनों के मुकाबले में उनके दोस्तों की तादाद दिखाने की नीयत कर ले कि हम जिंदा हैं जिनके हाथों में हुसैन का परचम है। जब आप इस नीयत से घर से निकलेंगे दुश्मनाने हुसैन के मुकाबले में और दोस्ताने हुसैन के हौसले को बढ़ाने की नीयत से, तो आपके हर उठाए हुए कदम के एवज एक गुनाह माफ होगा और एक अजर और हसना में इजाफा होगा। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजा ने गिरामी, ये अरबईन की रात है, चहलुम की रात। चहलुम का दिन कई हवालों से बड़ा अहम है। पहली चीज यह है जो इस दिन हमें हर सूरत में अंजाम देना चाहिए। रात में नहीं, दिन की बात हो रही है। जैसे ही दिन चढ़े, ज़ियारत अरबईन, अकेले में बैठे ज़ियारत अरबईन पढ़े, क़िबला रुख होकर बैठे, करबला की तरफ रुख करके बैठे, लेकिन ज़ियारत अरबईन को तर्जमे के साथ पढ़ें, हर लफ्ज को समझ कर पढ़ें, ताकि आप और मौला हुसैन के दरमियान राबता बराह रास्त भी हो और शूरी भी हो। शूरी राबता, लफ्जों का राबता नहीं, दिल का राबता। दिल का राबता कब होता है? जब इंसान आगही के साथ, शऊर के साथ, मारिफत के साथ, इल्म के साथ जानते हुए राबता करता है। अगर ये काम आप करेंगे, ये कल के माल में बेहतरीन अमल है। दूसरा, बाज लोग, मैं सोशल मीडिया में बाज लोगों का देख रहा था कि क्या नया सिलसिला शुरू हो गया, लोगों ने जो है मशी के नाम पे अब जो है अपने अपने घरों से, अपने अपने महलों से ये सफर शुरू कर दिया है, इससे जुलूस मुतासिर हो जाएंगे, इससे मातम मुतासिर होगा। गलत फहमी है, गलत फहमी, ये याद रखिए, ये याद रखिए। अरबईन वो दिन है जो हुसैन इब्ने अली से बैअत का मजहर है। अरबईन वो दिन है। रिवायात में यह है, चूंकि दो तरह की रिवायतें हैं, जिस पर गालिब अक्सरियत का इत्तफाक है वो यह है कि अरबईन का दिन वो है जब असीरान करबला वापस करबला में आए और कब्र हुसैन पर पहुंचे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी भी थे और उन्होंने वहां पर ज़ियारत अरबईन के जरिए से हुसैन इब्ने अली से तजदीद अहद किया। वो दिन है। अब जरा गौर करें, तारीखी एतबार से ये जो करबला की तरफ पैदल सफर और मशी का अमल कब शुरू हुआ, ये आज की बात नहीं है, ये सद्दाम के जाने के बाद की बात नहीं है। उसी दौर में ये जो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वापस करबला आना है, और इसी तरह से सहाबी रसूल हजरत जाबिर का करबला की तरफ सफर है, इन सफरों को सामने रखते हुए आम्मतुल मुस्लिमीन को और मुहिब्बाने अहलुल बैत को और पैरवाने शुहदाए करबला को एक रास्ता अइम्मा ने बताया, दीन ने बताया, अहलुल बैत ने बताया कि इन अय्याम में करबला का रुख करो। याद रखिए के अइम्मे अहलुल बैत के मानने वाले पूरी दुनिया में थे, पूरी दुनिया में। ज़ियारत अरबईन के जुमले आप पढ़ेंगे तो आपको यह तसव्वुर मिलेगा खुद ज़ियारत अरबईन से, पूरी दुनिया में थे। और उन दुनिया में बसने वालों को किस चीज ने जोड़ा हुआ था? करबला ने, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने। खुरासान में लोग थे, यमन में लोग थे, शाम में लोग थे, इराक में लोग थे, बसरा में लोग थे, मुख्तलिफ दुनिया के अतराफ व अकनाम में लोग मौजूद थे जो आशिकान अहलुल बैत थे। उनके दिल करबला से जुड़कर जिंदा होते थे, उनके दिल करबला की तरफ रुख करके सजदरेज हो जाते थे, लेकिन उनको आपस में जोड़ने का कोई इंतजाम नहीं था कि वो उनको आपस में कैसा कैसे जोड़ा जाए। इसलिए ये रविश इब्दा की गई, इसका आगाज किया गया कि अरबईन के मौके पर जहां जहां से लोग आ सकते हैं वो पैदल चले और करबला अरबईन के दिन पहुंचे, कब्रे हुसैन पर पहुंचे, और दुनिया भर में जहां जहां हुसैनी मौजूद हैं और उस दिन कब्रे हुसैन पर आ रहे हैं उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक के जरिए से उनको पहचाने, ताकि ये जो दुआओं इबादत का फलसफा है कि मोमिनीन एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे के गम और मुश्किल में साथ खड़े हो सके, एक दूसरे का साथ दे सके। जुमे का फलसफा यही है, जमात का फलसफा यही है। तो उस हुर्रियत फिक्र में, इज्तमाई जिद्दोजहद में यजीदियत के खिलाफ लोगों के जज्बात को जिंदा रखने में, जुल्म के खिलाफ लोगों के शऊर को उजागर करने में करबला का जो रोल है, उस रोल को ये रुख देकर ये बात लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि जो भी इन अय्याम में करबला में आएगा एक दूसरे से भी जुड़ेगा और हुसैन इब्ने अली से भी जुड़ेगा। लिहाजा ये रविश आज की नहीं है, 1400 सालों की रविश है। हां, उस जमाने में तादाद कम होती थी, आज करोड़ों में है। लिहाजा ये याद रखिए कि अगर आज की दुनिया में हम हुसैन इब्ने अली की बारगाह में सलाम करने के लिए अरबईन के मौके पर करबला नहीं पहुंच सकते तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए? आज की दुनिया में जो यलगार हुसैन इब्ने अली के मकतब के खिलाफ जारी है उसको पेश नजर रखें। ये मकतब जिसको हम मकतबे अहलुल बैत, मकतबे करबला, मकतबे सैयदुश्शहदा और मकतबे हुसैनी कहते हैं, इस मकतब की एक खसूसियत है कि दुश्मन ने इसको जितना दबाने की कोशिश की ये मकतब उसी कुव्वत के साथ ऊपर उठा है। इस मकतब की ये खसूसियत है, ये खसूसियत है। अब कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर इस मकतब को, यानी हुर्रियत के इस मकतब को, करबला के इस मकतब को मिटाने की और कंट्रोल करने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं। लातेदाद उसकी वजूहत हैं, चूंकि आज टाइम कम है उस पर मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन यह याद रखिए असल खौफ क्या है। असल खौफ, खौफ आपकी नमाज से नहीं है, खौफ आपके हज से नहीं है, खौफ आपके रोजे से नहीं है, खौफ आपकी जकात से नहीं है। खौफ किस चीज से है? चोर अगर आपके घर आए ना तो क्या करता है? टेस्ट करता है, टेस्ट कि ये लोग जागे हुए हैं या नहीं है। अब भी अगर आप देहातों में चले जाएं तो मैंने देहातों के बुजुर्गों से ये सुना है कि जब चोर आते हैं चोरी करने के लिए किसी घर में, जो मुतमवल लोगों का घर हो, तो 2-3 रातें कबल, रात के मुख्तलिफ पहर में, मुख्तलिफ औकात में पत्थर लेकर आते हैं, अचानक 2-4 पत्थर फेंक देते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं ये देखने के लिए कि आया घर वालों की तरफ से कोई रद्देअमल है या नहीं है, लाइट जले, कोई बाहर आए, कोई छत पर चढ़े, कोई आवाज बुलंद करे कि कोई है, क्या हुआ, किसने किया। तो समझ जाते हैं कि नहीं, ये लोग बेदार हैं, उस घर की तरफ रुख नहीं करते। लेकिन अगर कोई जवाब ना आए, 2-3 दिन ये टेस्ट करने के बाद आराम से दाखिल होते हैं और सब कुछ चुरा कर निकल जाते हैं। मकतबे करबला, उसके अंदर ये पोटेंशियल, ये खसूसियत मौजूद है कि पूरी आलम इंसानियत को बेदार भी कर सके और जुल्म के मुकाबले में खड़ा भी कर सके। यह मकतबे करबला की खसूसियत है। मकतबे करबला में यह खसूसियत है कि इबादत को मानवियत अता करें, हमारी नमाजों को भी, हमारे हज को भी। मकतबे करबला में यह खसूसियत मौजूद है। लिहाजा कुछ सालों से हमारे इर्द गिर्द ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से आजादारी सैयदुश्शहदा के सामने बंद बांधा जाए। अब गुज़श्ता 4-5 सालों से बाकायदा रियासती साये में ये काम तसलसल से जारी है। इस साल सिर्फ मुहर्रम में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, यहां का मुझे नहीं पता, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट आई कि 1200 से ज्यादा FIRें काटी गई, 1200 से ज्यादा। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने गैर कानूनी मजलिस की, बल्कि बहुत सारी जगहों में इसलिए कि उन्होंने 15 मिनट ज्यादा ले लिए, 20 मिनट ज्यादा आजादारी की। यानी आजादारी को महदूद करने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। दो कुवतें हैं, एक तरफ तकफीरियत, नासबियत और खारजियत है, और दूसरी तरफ इसी फिक्र से मुतासर हुकूमती और रियासती ढांचे के अंदर मौजूद वो बाकियात हैं जो माजी से चले आ रहे हैं। दोनों मिले हुए हैं और महदूद करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए अब बाकायदा कानून बनाया जा रहा है कि भाई आप बगैर इजाजत के आजादारी नहीं करेंगे। इजाजत के लिए जब आप जाते हैं, घर की आजादारी, घर की, आप अपने घर में मजलिस करना चाहते हैं, इजाजत नहीं है, क्या करें? थाने में दरखास्त दें। जब आप दरखास्त देंगे तो कहेंगे नहीं, इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो गोया आप आजादारी बिल्कुल नहीं कर सकते और हत्ता अपने घर में भी नहीं कर सकते। ये एक फजा बनाई जा रही है। इस फजा का मुकाबला कैसे होगा? मुकाबला इसी तरह से होगा कि अगर आप हमें अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी मस्जिद में, अपनी इमामबारगाह में खुलकर आजादारी करने नहीं देंगे, जबकि इस आजादारी से न किसी को नुकसान है, न किसी की दिलाजारी हो रही है, न किसी की आजादी सलब हो रही है, न किसी को नुकसान पहुंच रहा है, उसके बावजूद अगर आप आजादारी को इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर जो रद्द अमल आएगा वो एक बानी की तरफ से नहीं आएगा, 6 करोड़ तशय्यों के जवान की तरफ से, बूढ़े की तरफ से, बच्चे की तरफ से, मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से, हर तबके की तरफ से रद्द अमल आएगा। और फिर लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे, कूचू में भी निकलेंगे, शाहराहों पे भी निकलेंगे, कस्बों में भी निकलेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, अलम हाथ में उठाएंगे, लब्बैक या हुसैन की सदाएं देंगे और फिर पूरे मुल्क को जुलूसों का मुल्क बना देंगे। ये रद्द अमल है। ये रद्द अमल है। लिहाजा हुकूमतों को यह चाहिए कि इन आजादियों पर कदगने न लगाएं, वरना मुश्किलात उनके लिए शुरू हो जाएंगी, उनके लिए। अच्छा, इसलिए ये जो अभी मशी की रिवायत चली है, तो इस रिवायत को हमें ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा। इस और ये याद रखिए, पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर मशी शुरू न हुई हो, कोई कोना ऐसा नहीं है। और बाज इलाकों में लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये लाखों अफराद अरबईन से पहले ही अरबईन मनाने निकले हैं। क्यों निकले हैं? उस जुल्म के मुकाबले के लिए और इन पाबंदियों के रद्द अमल में कि तुम हमें घरों में रोकोगे तो हम शाहराहों में बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जईफों के साथ निकल कर इस अजा को, जिक्र को और हुसैन के परचम को बुलंद रखेंगे। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। यह ऐलान है उनकी तरफ से, उन आजादारों की तरफ से। इसलिए इन अय्याम में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि शऊरी तौर पर पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ इंसानों तक यह मैसेज पहुंचाएं कि अरबईन हो या आशूरा, यह अमन की निदा भी है, दिफा की अलामत भी है, गैरत मुस्लिम का परचम भी है और जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग भी है। लिहाजा इस तरह की इबादत मुआशरे को जिंदा कर देती है। इन इबादत में हर सूरत में जोक दर जोक पूरी तवानाई के साथ नीयत करके, गुसल करके, पाकीजा लिबास पहनकर, वुजू की कैफियत में आप जब निकलते हैं तो आपका हर हर कदम आपको हुसैन के करीब तर कर देता है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। عزاداران سید الشہداء، ماتمداران حسین، یہ ایام غم اور عزاداری کے حوالے سے بڑے ہی سخت ایام ہیں، سخت ایام. یہ عاشور سے کم کے ایام نہیں ہیں. شاید پہلے میں نے اشارہ کیا ہو کہ یاد رکھیے کہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے ایک دفعہ سر کٹایا اور شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اسیر تھے نا، یہ اسیر وہ مظلوم ہیں جو ہر روز مرتے بھی تھے اور ہر روز دوبارہ زندہ بھی ہوتے تھے. بہت دردناک ہے اہل البیت کی مظلومیت کا یہ پہلو، بہت دردناک ہے. اس درد کو سمجھیے، اس درد کو سمجھیے. اگر وہ درد ہمارے اندر ایک دفعہ زندہ ہو جائے تو ہماری دنیا بدل جائے. ہم سنتے ہیں نا کہ امام سید الساجدین نے کربلا کے واقعے کے بعد اپنی شہادت تک یہ جو ٹائم گزارا، اس میں آپ سنتے ہیں خطبہ سے، علماء سے، کہ ہمیشہ روتے تھے. 40 سالوں تک ہمیشہ رونا آسان کام ہے؟ یہ نہیں آسان کام نہیں ہے. کچھ لوگ آیت اللہ العظمیٰ حکیم کی خدمت میں آئے نجف میں اور عرض کیا کہ آغا ہم نے یہ روایت سنی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد، عاشور کے واقعے کے بعد، سید الساجدین 40 سال یا جب تک وہ زندہ تھے تب تک روز روتے تھے اور خون کے آنسو روتے تھے. ہم نے یہ روایت سنی ہے، کیا یہ روایت سچی ہے یا پھر اس میں مبالغہ ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ حکیم سے پوچھا کہ مبالغہ ہے یا سچی روایت ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے سر جھکایا اور پھر بے اختیار رونا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے رونا شروع کر دیا تو ان کی محفل میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگے. کافی دیر گزر گئی، ابا کی جیب سے رومال نکالا، اپنے آنسو پونچھے، پونچھنے کے بعد رومال زمین پر رکھا تو اطرافیوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ اس رومال پر جا بجا خون کے دھبے ہیں. جب خون کے دھبوں پر نظر پڑی تو پوچھا کہ آ کیا ہوا آپ اور یہ خون؟ کہا کہ دیکھو میں کربلا کے 1400 سال بعد پیدا ہوا ہوں، آج بھی جب میں کربلا میں ہونے والے ان مظالم کا سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے قطرے نکلتے ہیں. جب آج میں تصور کرتا ہوں کہ زینب کبریٰ کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا گیا، جب میں تصور کرتا ہوں کہ ام کلثوم کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک ہوا، رباب کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اہل البیت کے جوانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں. ذرا سوچو سید الساجدین نے یہ سارے مظالم اپنی آنکھوں سے خود دیکھے ہیں. سید الساجدین نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مظالم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو وہ اگر خون کے آنسو روئے تو تمہیں تعجب کیوں ہونا چاہیے؟ منحال امام سید الساجدین کے شاگردوں میں سے ہیں، اصحاب میں سے، مدینہ آئے، پہنچے امام سید الساجدین کے گھر، دستک دی، غلام نے دروازہ کھولا، سلام بھیجا اور کہا اجازت چاہتا ہوں. اجازت ملی، لے کر غلام گیا کہاں؟ گھر کی چھت پہ. کیا دیکھا؟ سید الساجدین چھت میں زمین پر تشریف فرما ہے، سامنے ایک برتن ہے، برتن میں پانی ہے، پانی کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں. یہ منظر دیکھا تو مضطرب ہوئے، پوچھا یا ابن رسول اللہ، کربلا کے واقعے کو 3 دہائیاں گزر گئی ہیں، آپ اب تک اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ منحال تم نے ہم پر جفا کیا ہے، تم نے ہم پر ظلم کیا. مولا کیا جفا کیا ہے؟ फरमाया कि देखो हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ चंद अरसे के लिए उनकी निगाहों से ओझल हो गया था, जिंदा था, अजीजे मिस्र बन रहा था, इज्जत पा रहा था, लेकिन याकूब की आंखें रो रो कर सफेद हो गई और वो नाबीना हो गए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि करबला में हमने अपनी निगाहों के सामने 18 यूसुफ जबा होते देखे, अहलुल बैत के 18 यूसुफों को जबा होते हमने अपनी निगाहों से देखा है। अगर हम न रोए तो कौन रोए? जैसे ये फरमाया तो याकूब मिनहाल ने पलट कर कहा कि यब्न रसूलुल्लाह, ये बताइए कि क्या शहादत आपका विरसा नहीं है? जब शहादत आपका विरसा है तो फिर इतने अरसे के बाद रोने का क्या मतलब है? इमाम एक दफा तड़प उठे, तड़प उठे, तड़प कर कहा मिनहाल तुमने फिर जफा किया। पूछा क्या मतलब ये अपना रसूलुल्लाह? फरमाया कि हां शहादत हमारा विरसा है, लेकिन बाजारे कूफा शाम में अब इन बीबियों का नंगे सर फिराया जाना भी हमारा विरसा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी भुभियां, मेरी बहनें और हमारी बेटियां नंगे सर बाजारों में फिराई गई है? जब यह जुमला इरशाद फरमाया तो मिनहाल ने कहा कि अपने रसूलुल्लाह जरा बताइए सबसे सख्त मरहला कहां पर था? जवाब में फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम, तीन बार कहा शाम में। अर्ज किया अपने रसूलुल्लाह शाम में हुआ क्या था? कहा कि सात बड़े वाकयात हुए, सात बड़े वाकयात, मैं आपके सामने दो तीन अर्ज कर देता हूं। कहा पहला यह हुआ कि जब हमें शाम के बाजारों में पहुंचाया गया तो पहुंचाने से पहले, बाजार में दाखिल होने से पहले हमें सवारियों से नीचे उतारा गया। जब हमें उतारा गया तो हमारे हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए, हमारी गर्दनों में जंजीरें बांध दी गई, उन जंजीरों को एक दूसरे से मुत्तसिल किया गया। एक बड़ा इंसान, एक बड़ी मुखद्दरा, एक जवान इस तरह से बांधा गया, आगे खातून होती, दरमियान में कोई बच्चा होता। और जब हमें इस कैफियत में एक लाइन और जंजीर की सूरत में बांध कर, और वो भी एक ही जंजीर से शहर में दाखिल किया गया, तो शहर में तमाशबीनों का इज्तमा था। उन तमाशबीनों के इज्तमा में जब हमें दाखिल किया गया तो चारों तरफ से गालियां सुनने को मिली, चारों तरफ से हम पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, चारों तरफ से हम पर कचरा बरसाया जा रहा था। अब उसमें रश इतना था कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, तो यजीदी लश्कर के फौजियों ने क्या किया, नेजे की अनियां मेरी भुपियों को चुबोना शुरू कर दी कि जल्दी चलो तेज चलो। अब जब अगली खातून जरा तेज चलती तो जंजीर खिंच जाती, जब खिंच जाती तो वो जो दरमियान में बच्चा था वो जमीन से हवा में उखड़ जाता। इस कैफियत में हम जब आगे बढ़े तो एक वक्त ऐसा आया कि घरों की छतों से जलते हुए अंगारे हम पर फेंके गए। जब एक अंगारा मेरे कपड़ों पर गिरा तो उसको आग लगी, लेकिन अब कैफियत यह थी कि मेरे हाथ पसे पोस्ट बंधे हुए थे, मैं अपने बदन पर लगने वाली आग बुझा नहीं पा रहा था।